नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत ने अगले 5 वर्ष में भूटान को 10,000 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। दोनों देश राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करने पर सहमत हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कदाचार में लिप्त 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी। रूस में मॉस्को के पास कॉन्सर्ट हॉल में बंदूकधारियों की गोलीबारी में कम से कम 60 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायल। ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ली। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने बेसल में स्विस ओपन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया और चेन्नई में IPL क्रिकेट के पहले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत अगले 5 वर्ष में भूटान को 10,000 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भूटान की यात्रा के पहले दिन थिम्पू में यह घोषणा की। प्रधानमंत्री ने भूटान नेतृत्व को आश्वासन दिया कि भारत भूटान के साथ खड़ा रहेगा और उनके अद्वितीय द्विपक्षीय संबंध, संपर्क, बुनियादी ढांचे, आधारभूत अवसंरचना, व्यापार तथा ऊर्जा और उद्योग क्षेत्रों में अधिक सहयोग की संभावनाओं की खोज करेंगे। दोनों देशों ने ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए और दोनों देशों के बीच रेल संपर्क पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।
हम भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए नया एयरपोर्ट हो, गैलेपू से कोकराझार, सामची से बनरहाट के बीच नए रेलवे लिंक हो, ब्रह्मपुत्र के जरिए वाटरवेज का संचालन हो, जल्द ही हम इन्हें तेजी से पूरा होता देखेंगे।
भूटान को भारत की आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि सहायता में भारत का समर्थन भी शामिल है।
इंडिया भूटान रिलेशनशिप फ्रॉम दिस ऑनगोइंग स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वॉज द अनाउंसमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी सपोर्टिंग द 13th 5-year प्लान ऑफ भूटान टू द ट्यून ऑफ ₹10,000 crores। दिस assistance also includes India's support for Bhutan's economic stimulus package।
प्रधानमंत्री ने कल भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से बातचीत की। श्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के मित्रता के संपूर्ण आयाम की समीक्षा की और विकासात्मक साझेदारी के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों की गहनता पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो प्रदान किया गया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने थिम्पू में प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि हर पुरस्कार अपने आप में विशेष होता है, परंतु जब दूसरे देश से पुरस्कार मिलता है तो इससे मालूम चलता है कि दोनों देश सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।
यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से यह सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान के लिए आपका और भूटान की जनता का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थिम्पू में भारत सरकार की सहायता से बने अत्याधुनिक अस्पताल ग्यालत्सुएन जेटसन पेमा मातृ एवं शिशु का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए अदालत से 10 दिन की हिरासत की मांग की थी। निदेशालय ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति को तैयार करने में सीधे तौर पर शामिल थे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कदाचार में लिप्त होने के कारण 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें दिल्ली के 5 स्कूल भी हैं। बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा है कि औचक निरीक्षण के दौरान संबद्धता और परीक्षा नियमों के पालन में विसंगतियां पाए जाने के बाद कड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीएसई ने कहा कि ये स्कूल डमी छात्रों, अयोग्य उम्मीदवारों को पेश करने जैसे विभिन्न कदाचार कर रहे थे और रिकॉर्ड ठीक से नहीं रख रहे थे। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लगा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने 2100 पर्यवेक्षकों की टीम तैनात की है। ये पर्यवेक्षक देश भर में जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों पर निगरानी रखेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होगी। पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने राज्य में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में 14 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की कई सामग्री जब्त की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मध्य प्रदेश में 3,500 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर महिला मतदान कर्मियों द्वारा वोटिंग कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि इन मतदान केंद्रों पर तैनात पूरा मतदान दल महिलाओं का ही होगा।
लोकसभा निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने टारगेट किया है कि 3,500 मतदान केंद्र हम महिलाओं के द्वारा संचालित सोचा, अधिक से अधिक प्रयास ये होगा कि और भी बढ़ाएं। इसी तरह से 250 मतदान केंद्र दिव्यांग साथियों के द्वारा संचालित हों। लोकसभा निर्वाचन में लगभग 5.5 लाख कर्मचारी हमारे लगेंगे।
मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होगी। पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई और चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया 13 मई को सम्पन्न होगी। सभी चरणों की मतगणना के परिणाम एक साथ 4 जून को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 5,63,60,000 से ज्यादा मतदाता इन चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
त्रिपुरा में 19 और 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले दो चरण के लिए प्रचार धीरे धीरे तेज हो रहा है। बड़ी पार्टियों ने भी चुनावी प्रचार के लिए कमर कस ली है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में त्रिपुरा पश्चिम संसदीय सीट के लिए 19 अप्रैल को, जबकि त्रिपुरा पूर्व के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा।
राज्य में राजनीतिक दलों का प्रचार धीरे धीरे तेज हो रहा है। साथ ही चुनाव मशीनरी ने विभिन्न जिलों में मतदान कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक सहा ने अपने पार्टी के उम्मीदवार बिप्लव कुमार देव के लिए प्रचार में भाग लिया, जो त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और सीपीआईएम के इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी अगरतला और पड़ोसी सिपाही जला जिले के कई इलाकों में घर घर जाकर प्रचार किया। इसके अलावा सीपीआईएम के उम्मीदवार और पूर्व विधायक रतन दास ने रामनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां 19 अप्रैल को त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट के साथ मतदान होना है। बीजेपी ने इस सीट से अगरतला के मेयर दीपक मजुमदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
रूस में मॉस्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल में बंदूकधारियों की गोलीबारी में 60 से अधिक लोग मारे गए और 145 से अधिक घायल हो गए। इस्लामिक स्टेट गुट आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है, हालांकि गुट ने दावे के समर्थन में सबूत नहीं दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में रूस की सरकार और लोगों के साथ खड़ा है। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 1931 में लाहौर षड्यंत्र मामले में इन तीनों महान शहीदों ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। इस अवसर पर आज पंजाब सहित देश के कोने कोने में इन महान शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, बस यही उनका आखिरी निशान होगा। इन पंक्तियों की तर्ज पर पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर जिले में स्थित भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कलां और फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर विशेष शहीदी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 23 मार्च 1931 को हुसैनीवाला में ही तीनों शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार किया गया था। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके करीबी मित्र भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी, जो खुद एक क्रांतिकारी योद्धा थी, ने कहा था, फांसी उनका मंडप बन गई, फंदा उनकी माला और मौत उनकी दुल्हन बन गई। इन महान शहीदों को शत शत नमन, जो देश की खातिर अमर हो गए। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल स्विट्जरलैंड के बेसल में उन्होंने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में ली चिया हाओ को 21-10, 21-14 से हराया। आज फाइनल में उनका मुकाबला ली चुन यी से होगा। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में प्रियांशु राजावत को तिएन चेन चाओ से 15-21, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। किरण जॉर्ज भी डेनमार्क के रास्मस गेमके से हार गए। आईपीएल में आज मोहाली में दिन में 3:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और कोलकाता में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। 17वें इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के पहले मैच में पिछले विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया है। राजधानी में सोमवार को होली के दिन दिल्ली परिवहन निगम की बसें दोपहर 2 बजे तक नहीं चलेंगी। इसके अलावा सीएनजी इलेक्ट्रिक डिपो की कुल 25% बसें ही चलेंगी। हालांकि कल होलिका दहन के दिन सभी बसें अपने निर्धारित समय पर चलेंगी। इसके अलावा होली के दिन नमो भारत ट्रेन शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही चलेंगी। दोनों दिशाओं में पहली ट्रेन शाम 4 बजे शुरू होगी और आखिरी ट्रेन साहिबाबाद और मोदीनगर नॉर्थ से रात 8 बजे प्रस्थान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद कनक। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड पर भेजे जाने की खबर अखबारों की पहली सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, ईडी ने कहा केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना, बोले अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से चलेगी सरकार। अमर उजाला ने भी कोर्ट में ईडी का बयान दिया है, केजरीवाल आबकारी नीति में सीधे शामिल। हरिभूमि की हेडलाइन है, ईडी का दावा 45 करोड़ गोवा चुनाव में भेजे गए। दैनिक ट्रिब्यून ने अन्ना हजारे का बयान दिया है, अपनी करतूतों के कारण गिरफ्तार हुए अरविंद, रिमांड रूम में मनेगी केजरीवाल की होली। वीर अर्जुन की टिप्पणी है, कांग्रेस को खाता फ्रीज मामले में राहत तो नहीं मिली, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक से सम्मानित किए जाने का समाचार राष्ट्रीय सहारा, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान में पहले पन्ने पर सचित्र है। मध्य प्रदेश में विवादित भोजशाला का एएसआई द्वारा सर्वे शुरू किए जाने का समाचार राजस्थान पत्रिका और नवभारत टाइम्स में है। दैनिक भास्कर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर मदरसे में पढ़ रहे 2 लाख बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ाने का आदेश दिए जाने का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने भी यह खबर दी है, उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 असंवैधानिक। हिन्दुस्तान ने आसार शीर्षक से लिखा है, होली पर 9 राज्यों में पारा 40 के पार जाएगा। पत्र ने क्लाइमेट सेंट्रल के अध्ययन के हवाले से लिखा है, इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार। पत्र ने रेल यात्रियों को जानकारी दी है, रेलवे 1 अप्रैल से करेगा बड़े बदलाव, टिकट हो या जुर्माना अब QR कोड से भी भुगतान।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने अगले 5 वर्ष में भूटान को 10,000 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। दोनों देश राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करने पर सहमत हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कदाचार में लिप्त 20 स्कूलों की मान्यता रद्द की। रूस ने मॉस्को के पास कॉन्सर्ट हॉल में बंदूकधारियों की गोलीबारी में कम से कम 60 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायल। ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ली, भारत ने इस हमले की निंदा की है। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने बेसल में स्विस ओपन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।